Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chowdhury and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. प्रमुख समाचारों के विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार सोनू, गुड इवनिंग अर्जुन.
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद है अर्जुन चौधरी.
Benchmark domestic stock market indices rise. Sensex gains 185 points. Nifty settles above 22,700. Major Asian stock market indices end in negative territory and global crude oil prices surge over 7%.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक वृद्धि में रहे. सेंसेक्स 185 अंक बढ़ा, निफ्टी 22,700 के स्तर को पार कर गया. प्रमुख एशियाई बाजार आज गिरावट पर बंद हुए और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 7% से अधिक का उछाल.
And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और आइए अब चले भारतीय शेयर बाजारों की ओर, जहां प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 0.2% की तेजी पर बंद हुए. सेंसेक्स 185 अंकों की वृद्धि से 73,320 पर बंद हुआ. निफ्टी 34 अंक बढ़कर 22,713 पर दर्ज हुआ. हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में गिरावट आई. मिड कैप 100 सूचकांक लगभग 0.3% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 0.4% के नुकसान पर बंद हुए. शुरुआत में एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच बाजार भारी गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा सूचकांकों में बढ़त आती गई और शुरुआती गिरावट से उबरते हुए कारोबार के अंतिम घंटे में वे नुकसान से मुनाफे के क्षेत्र में आ गए.
Benchmark domestic equity indices rose around 0.2% today. Sensex advanced 185 points to close at 73,320, while Nifty added 34 points to settle at 22,713. However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 fell nearly 0.3%, while the small-cap 100 closed about 0.4% lower. Earlier, the markets opened with a gap down amid negative Asian cues, but the stock market indices eased their losses as the session progressed and turned positive in the final hour of trade.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 19 के शेयर आज वृद्धि में रहे. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो HCL टेक लगभग 3.5%, टेक महिंद्रा करीब 2.7% और इंफोसिस 1.9% बढ़त के साथ बंद हुए. दूसरी ओर एशियन पेंट्स के शेयर में लगभग 2.5% गिरावट आई. एटर्नल का शेयर 2.1% से अधिक गिर गया और सन फार्मा के शेयर में 1.7% की गिरावट दर्ज.
Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of the 25 sectors ended in negative territory except capital goods, which remain unchanged. Among the top drags, mid-cap private banks plummeted over 1.1%, consumer durables lost almost 0.9% and hospitals dipped over 0.8%. Among the gainers, Focused IT climbed almost 2.8%, IT jumped over 2.4%, and realty gained 1.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,680 companies advanced, 1,547 declined, and 160 remained unchanged. Also, the Indian stock market will remain closed tomorrow on account of Good Friday.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1.71 रुपए की मजबूती में रहा और 1 डॉलर की कीमत 93.10 रुपए दर्ज हुई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.23 पर कारोबार कर रहा था।
Immunio's US President Donald Trump has said that American forces will finish the job in Iran soon as core strategic objectives are nearing completion. In a televised address from the White House, Trump touted the successes of the US campaign Operation Epic Fury, saying the US is winning bigger than ever before. In his 20-minute speech, Trump said every American can look forward to a day when they're finally free from the wickedness of the Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. President promised that when the war is over, the United States will be safer, stronger, more prosperous and greater than it has ever been before. He also called on allies to build up the courage to secure shipping in the Strait of Hormuz, arguing that the US doesn't need it.
आज का बहुत ही वॉलेटाइल रहा है दिन सिद्धार्थ शेयर बाजार के लिए। शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई, लेकिन फिर स्टेडिली बाजार ने तेजी दिखाई और पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है। हालांकि यूएस फ्यूचर्स अगर हम देखें तो वो नेगेटिव है 1.5 to 2%, और हम देखेंगे कि एशियाई बाजारों में भी गिरावट है। कैसे देखते हैं आप बाजार की इस रिजिलियंस को, भारतीय बाजार की?
नहीं देखिए सोनू, जो आपने बात कही, बाजार शुरुआती दौर में सुबह तकरीबन जब बाजार खुले तो 1800 पॉइंट के आसपास तक बाजार गिरे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा सेकेंड हाफ में धीरे धीरे एक तो गिरावट कम हुई जैसे जैसे समय दिन निकला, और शायद उसका बड़ा कारण ये था कि जो ये एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने अपना एड्रेस में जो है क्लैरिटी नहीं दी कि कब, ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस बात की एक साफ इंडिकेशन देंगे कि कब वो जो ईरान के ऊपर जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ वो कब ख़त्म करेंगे, तो लेकिन शायद वो उसी की वजह से बाजार में आज फिर अनसर्टेनिटी लौटी जो, और लेकिन शायद जैसे जैसे समय निकला प्रोग्रेसिवली हमने देखा बाजार में जो है दोबारा मजबूती आई और पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई। और बेसिकली मुझे जो लगता है कि जो एक सबसे बड़ा कारण बना जो रुपए में आज मजबूती आई, तकरीबन 2% रुपए में मजबूती आज आई, और खासकर बिकॉज आरबीआई ने दो बड़े स्टेप्स उठाए थे रुपए को जो है स्पेकुलेशन जो हो रही थी उसको रोकने के लिए जो दो कदम उठाए उन्होंने उसका एक नतीजा था। उसके साथ साथ आपने देखा होगा आईटी इंडेक्स और रियल्टी दोनों में, और आईटी खासकर, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जनरल कमेंट्री है, अब वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइजेस तकरीबन बॉटम पर आ गए, बहुत नीचे स्तर पे चले गए, और ज़्यादातर जो कमेंट्री है वो ये है कि अब यहाँ से जो है मतलब दे आर एट अ वेरी एट रेट्स वेरी अट्रैक्टिव रेट्स या वैल्यू बाइंग जिसको कहा।
पिछले अगर हम वित्त वर्ष में देखें तो 10% से अधिक गिरावट आई थी आईटी सेक्टर में,
तो वही एक कारण है मुझे लगता है, बड़ा कारण वो था साथ साथ रियलिटी में। और इन जनरल भी अगर आप देखेंगे जिस तरह से सरकार ने ईरान, जब से ये इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे जो हमला किया है और जो लड़ाई चल रही उसके बाद से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, जो खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, एलपीजी को लेके, उसको जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया है कहीं ना कहीं वो भी रेजिलियंस जो हम देख रहे हैं, बार बार बाजार जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं बार खरीदारी जो है लौटती है बाजार में, तो मुझे लगता है वो रेजिलियंस भी कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा पुश दे रहा है।
So clearly the buying opportunity is there in the stock market right now. Many soothsayers are saying that the markets are likely to bounce back. Today we saw a rebound in the market. It fell by almost 1500 points before. It actually went up by 185 points at close. Just linking this to Trump's address, because the US has tremendous control over what's happening in the Middle East. Operation Epic Fury started with a blast, clearly, and Iran retaliated. How do you see the end to the war. Is that the reason why we are seeing a recovery in the markets and the promising buying support by DIIs? There has been a tremendous impact on inflation because of oil and gas coming from the Strait of Hormuz. And let's not forget phosphate also, which is a very important component of fertilizers.
See, Arjun, as you said, how do I see it? I think now the indication is that more or less the worst is behind us in terms of the conflict. Yes, and now it all depends when and how US withdraws. And probably they are also looking for a safe route, basically. And as you said, I would say the entire game, which I think the way US and Israel thought they would be able to finish the war in a very short span of time, I think that has, it has not happened as they thought. Plus, I think now the markets also are somehow kind of factoring in the worst is behind us. And yes, obviously it may last for a few more days, as he has again today warned that maximum they would be withdrawing in 2 to 3 weeks, though he has again threatened them with very heavy strikes, especially on their energy and other strategic installations. So, but yes, I see, because in the meanwhile, as you mentioned, the economic impact and the way the government has handled it in a very positive way, we have not seen any shortages. There was initial problems, initial stress in terms of LPG supply, which has also now kind of stabilized, and petrol, diesel, we have not seen any shortages. Other the other consolation, or I would say the benefit that we have, that we have huge stocks of fertilizers. So already in the briefing, government has assured the farmers that for Kharif we are completely covered in terms of, and already we have stocks more than what we had last year. It's almost about 25% more than the last availability of fertilizers in the last Kharif season. And then we have also kind of, we are also constantly monitoring it, the situation, with the help of the states and the coordination between the various departments of the government. So I think that is also, all that is bringing this positivity.
तो फिस्कल और मॉनेटरी दोनों लेवल्स पर जो कदम, टारगेटेड कदम उठाए जा रहे हैं आरबीआई द्वारा भी एंड सरकार द्वारा भी, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी में कट हो या जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए रॉड टेप का जो ड्यूटीज और टैक्सेस में जो कंसेशन का पीरियड और आगे बढ़ा दिया गया है, ये सारे जो टारगेटेड स्टेप्स हैं, और भी कई स्टेप्स लिए हैं सरकार ने, इससे भी विश्वास जगता है इन्वेस्टर्स का?
नहीं, बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे कि सरकार ने जो है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी काट दी पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसके बाद आज ही जो है कस्टम्स पेट्रोकेमिकल्स, जो कि बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसपे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्लास्टिक्स हों, केमिकल्स हों, और आपके पेंट इंडस्ट्री हो, जिसपे कि एक बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा था कि सबका पड़ेगा, उसके ऊपर सरकार ने पूरी कस्टम ड्यूटी विड्रॉ कर ली है. कल SEZ यूनिट्स को भी डोमेस्टिक हिंदुस्तान की बाजार में, जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनको भी एक सर्टेन एक्सटेंट तक, चूंकि डिसरप्शन है ग्लोबल ट्रेड में, तो उनको भी अलाउ किया है. तो ये सब जो बात आप कह रहे हैं, स्टेप्स जो सरकार ने लिए हैं, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्टर्स को जो है पुश, कहीं ना कहीं कंफर्ट देने वाले कदम भी उठाएं, और साथ साथ मुझे लगता है और आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे और सारे कई सरकार की तरफ से कदम उठाएंगे. कल ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मिली थी, और प्रधानमंत्री ने इस बात के साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से आम आदमी को किसी भी इन चीज़ों की, जो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, उनकी परेशानी ना हो, साथ साथ किस तरह से इस पूरी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलना है, उसका पूरा एक रोड मैप हम तैयार करके रखें.
Siddharthji, if you're looking at the markets right now, mentioned about Nifty IT that went up by 2.6%, a lot of value buying there. What is the promise for Nifty Defense? Today it was didn't go up by much, only 3 points, but the kind of expenditure we are seeing for the security of the nation, how do you see defense stocks in the short to medium term, and also oil and gas for that matter, because procurement by the government of India has been very, very strategic, even though Nifty fell by only 87 points.
See, Arjun, I would also try like to refer to another data. If you look at in the last 20 years, the years in which Nifty and the Sensex have ended in a negative trade, or they have given negative returns, like Nifty in the year which just ended, I think the negative return was to the extent of 5%, and Sensex was to the extent of 7%. 11%.
Although 11% March में आया, so otherwise the rest of the year it was moderately positive only.
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सोनू, आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम पूरे साल का जब हम आकलन करते हैं तो obviously वो negative returns ही हैं. और इसकी जो मैं बात कहना चाह रहा था, the fact that I was trying to mention was that कि the year they have ended in the next in the negative territory, the year which follows. We have always seen, at least there are five examples. If you look at the last 20 years data, so the year, five times we have seen the follow-up year, we have seen huge Nifty and SEC giving good returns, very positive returns. So I think one factor that I would like, I just wanted to mention for the benefit of the listeners. And coming back to your question on defense, obviously, yes, I think we are investing hugely in defense, and our own domestic companies are very, very, the capital expenditure plans are very robust. And now we are also getting huge import export orders from the outside countries, especially Asia Pacific countries, for for different kind of what should I say, manufacturing items related to defense. So I think there is a very positive side to that.
So Siddharth ji, uncertainty to bahut hai, but very briefly, broadly aapki kya advice hogi investors ke liye at this point of time?
सुनो, मुझे लगता है कि ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, और ज्यादातर मैंने देखा है जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो लोग नहीं खरीदते हैं. बट मुझे लगता है कि आपको धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा आप अपनी होमवर्क जरूर करें. अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप ETF वगैरह ले लें, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है वैल्यू बाइंग. बहुत अच्छे लेवल्स पे अच्छी कंपनीज मिल रही हैं. थोड़ा सा स्टडी करें, बिकॉज देर आर कंपनीज जो विच हैव फेल शार्पली, शेयर प्राइजेस हैव गॉन डाउन, दो उनके प्रॉफिट्स, उनके रेवेन्यूज, दे आर ऑल इन डबल डिजिट. सो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड टाइम. येस, यू कैन, वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स. थोड़ा रोक रोक के थोड़ा कम कम करें, क्योंकि और एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बार शायद जब आपको मुनाफा जो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा हो सकता है रुक के आए, दो तीन साल, कम से कम तीन साल. अगर आप तीन साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस लेवल से आपको बहुत फायदा होगा.
Brief comment, because the RBI's meeting is going to be held on the 7th to the 9th of April itself. How do you see that impacting the banking index? It went up by 100 points today. The earnings are not affected. Do you see that factoring into the investor's mindset?
See, Arjun, our banks, I think even this, the financial year which has just ended, I think they would be ending the year with a profit almost of, combined profit of almost, at least the state-owned banks would be doing a combined profit of about 2 lakh crores, upwards of 2 lakh crores. So I see our banks are in a very strong position. So, and if the Iran, Israel, US conflict, which I think is in its last phase, should be in the 1/3-4 of it is gone, in my view. So the last 1/4 should end soon. So if that happens, I see a rebound in the economy and I see banks doing well.
आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. अधिकांश एशियाई बाजार आज गिरावट पर बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% लुढ़क गया. जापान के निकेई 225 सूचकांक में 2.4% की गिरावट आई. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.7% से अधिक के नुकसान में रहा. हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% का नुकसान दर्ज हुआ और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक लगभग 0.6% गिरकर बंद हुआ. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी गिरावट का रुख था. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 2.4% से अधिक लुढ़क गया था. फ्रांस के कैक 40 में 1.3% से अधिक की गिरावट चल रही थी और लंदन का फुटसी 100 0.5% के नुकसान पर था.
Moving on to the US stock market, Wall Street ended on a positive note yesterday. Hours before addressing the nation on the war, US President Donald Trump said in a social media post that Iran's president had requested a ceasefire. Among the major stock market indices, the Nasdaq Composite Index surged almost 1.2%, the S&P 500 rose 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.5%. The stock market seems to be rebounding in the US as well, even though the volatility index is almost 27.54. There are two questions I want to ask you. One is SpaceX IPO. Do you feel it's the right time to launch that? And secondly, the US dollar index has been going beyond 100, and the demand for US dollars has gone up ever since this war in the Middle East, there seems to be a move away from gold and silver to the greenback once again, the US dollar.
See, basically, Arjun, to answer to your second question, obviously, because there is a feeling that obviously gold is something which you don't gives you, doesn't give you returns. So also people were booking profit. But you saw that we saw gold prices falling for the first 15 days. But again, from last week, we have seen a recovery back in gold. And as far as obviously dollar, because the people were shifting to the safer havens, and especially the US Treasury bonds offering you 4.5% safe returns, which is the safest instrument currently.
And lifting of sanctions, I believe, has also played a role.
Yeah, obviously. Yeah, that also. And your question, the first question on the SpaceX. It all depends on the investors will give you the answer, I think, whether it is the right time. But I feel, yes, I think there is nothing wrong in launching it.
But ये जो rebound आया, ये President Trump के address से पहले आया, अब आपको लगता है कि वहाँ पर भी एक negative impact आ सकता है? अब जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो
सोनू, जो हमसे ज्यादा मुझे लगता है वहां पे लोगों को चिंता है, क्योंकि अमेरिका में भी अब जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का डर, मतलब इन्फ्लेशन में वृद्धि और अनएम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि का डर सता रहा, और वहां के लोग अब बहुत इसको लेके अनइजी हैं।
इनफैक्ट फ्यूचर्स, वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स 2% अभी नीचे हैं।
तो आपने जवाब वही, वो मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने कोई डायरेक्ट आंसर अभी भी, ट्रंप साहब, क्योंकि वो एक रास्ता खोज रहे हैं इस पूरी इस जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए, एक फेस सेविंग जिसको बोला जाए, ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ फेस सेविंग, बट how it pans out, it is very difficult to say, because he is talking of two contradictory positions. He said it will end in two to three weeks, but he's at the same time saying that we'll be attacking their power and strategic locations. So in these uncertain times, obviously, I don't know, but yes, he is under pressure from his own people.
और एशिया के स्टॉक्स पे, यूरोप के स्टॉक्स पे भी आपको लगता है ये दबाव बना रहेगा?
बिल्कुल रहेगा सोनू, बिकॉज सब कोई इफेक्टेड है ईरान के इस लड़ाई से, जो गल्फ से एनर्जी डिपेंडेंस है वो एकदम खुलकर सामने आ गई है।
एंड द डिमांड फॉर रिपेयर्स,
यस।
एंड आरबीआई पॉलिसी की बात की थी अर्जुन ने, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का जो एक खतरा पैदा हुआ है पूरे विश्व में, उसको देखते हुए आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की भी प्रोबेबिलिटी है?
नहीं, मुझे लगता है अभी इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हाँ कुछ किसी तरह का एक सिग्नल करेगा, स्टांस जो न्यूट्रल है उसको बदल सकते हैं वो, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो 4% का बैंड है उसके नीचे है, और अभी तक सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं, सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि प्राइजेस जो पेट्रोल डीजल की हों या आपकी एलपीजी हो, सरकार कहीं ना कहीं उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है, तो अभी पास ऑन नहीं कर रही, और अभी सिर्फ लड़ाई का ये 5वां हफ्ता है। हम आशा करें कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो, और शायद इतनी स्थिति खराब ना हो कि हम फिर से एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नौबत आए।
जी, लेते हैं अगली खबर। देश का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 62.66% की वृद्धि है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का योगदान 54.84% और निजी क्षेत्र का योगदान 45.16% रहा। अगर हम वृद्धि की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात में 151% की वृद्धि हुई है, जबकि निजी कंपनियों ने भी 14% की वृद्धि दर्ज की है। क्या कहेंगे, ये डिफेंस सेक्टर में जो भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बढ़ती भागीदारी है, जो एक्सपोर्ट्स में हमने इतना उछाल देखा, और प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन हो रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए? और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें तो
नहीं, आपने बहुत बढ़िया अहम बात बोली कि ये एक ऐसा उदाहरण है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, और तकरीबन 2030 तक हमारा, क्योंकि जब से ये सरकार आई है उसका डिफेंस और खासकर डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन फॉर आर ओन, हमारी अपनी जरूरतों के लिए, साथ साथ मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड पे फोकस रहा है, और इसीलिए हमने तकरीबन 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा है 2030 तक। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हमने कहा है कि हम टोटली सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, ऑलरेडी हमने कई चीजें खरीदना बंद कर दी हैं, और वेपनरी वेपन्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट 70% हम अपनी सेल्फ रिलायंस के स्तर पे पहुंचना चाहते हैं 2027 तक। और फिर आप देखेंगे जो बहुत फेमस हमारे कुछ चीज़ें हैं जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, वो हम खुद अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर। साथ साथ आपके चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर आपका तेजस एयरक्राफ्ट है, तो इन सब चीज़ों के को लेके बहुत ज़्यादा हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं छोटे जो सर्वेलेंस में काम आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। साथ साथ हम स्टार्टअप्स को भी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत प्रमोट कर रही है इंडिया, तो ये सब मुझे लगता है उसी का नतीजा है जो हम ये डिफेंस के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स निरंतर हमारे बढ़ रहे हैं। और जो कंपनियों की बात कही आपने शेयर बाजार में, वो भी बहुत मजबूत कंपनियां, स्टेबल कंपनीज हैं हमारी, जैसे हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स है अगर मैं नाम लूँ तो, मजगांव डॉक है, कोचीन शिपयार्ड है, और इनकी जो आप जो इनकी सप्लाई लाइंस हैं या वो जो है वो भी ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है।
In more news, the government has decided to provide full customs duty exemption on critical petrochemical products till the 30th of June 2026 in view of the ongoing conflict in West Asia and the consequent disruptions in the global supply chains. The Ministry of Finance has said that this measure has been taken as a temporary and targeted relief to ensure continued availability of critical petrochemical inputs for the domestic industry. It noted that the step will help reduce cost pressures on downstream sectors and safeguard supply stability in the country. Very briefly, how do you see this impacting your everyday products meant for consumption?
Nahin, bilkul,
pricing wise.
Yeah, so basically this is just because you have just given them a big relief by taking out the custom duty. So that is how, so that the product prices don't go up. So that is the intended relief, and obviously the supply chains also are not affected because of that.
Aur ab chale commodities ki or?
Yes, global crude oil prices climbed nearly 7% today after President Donald Trump said the U.S. would continue attacks on Iran, stoking fears of prolonged disruptions to oil supply. Brent crude was trading 7.9% up at $109.15 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 9.7% higher at $109.89 per barrel when reports last came in. How do you expect global shipping to hedge their position? Are they prepared to take a longer route and not go through the Strait of Hormuz, where 20% of crude oil passes through that area and straight going through the Panama Canal as well? Do you see them taking a longer route and maybe delaying supplies?
No, Arjun, basically taking a longer route, they have no option. So I think because currently the vessels passing through the Strait of Hormuz are only with the Iranian permission. So I think most of them are just forced to take the longer route, and that is why the supply, it is taking long for supplies to reach to their destinations.
And let's have a look at the precious metals market now. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 3.4% down at 1,48,280 rupees per 10 grams, while silver was trading 6.5% lower at 2,28,030 rupees per kilogram a short while ago.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 3.4% से अधिक गिरावट के साथ 1,48,426 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी भी 6.3% के नुकसान से 2,28,084 रुपए प्रति किलो पर थी। घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। सिद्धार्थ जी, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप दोनों को भी धन्यवाद।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क स्टॉक मार्केट indices on the domestic front, Sensex gains 185 points, Nifty settles above 22,700, major Asian stock market indices end in negative territory, and global crude oil prices surge over 7%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।